सातवें अध्याय का ये सातवां श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम एवेषि अस्य संशयः। ट्रांसलेशन अनुवादित है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हम सब लोग मोबाइल बंद कर लेते हैं, फिर से पढ़ूंगा मैं, नहीं तो फोकस नहीं होगा। मेरे साथ पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अब अनुराग प्रभु नहीं आए, आ जाएंगे। तो तात्पर्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के जीवन से बहुत ही रिलेवेंस है इसका, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूँ, है ना। इससे पहले वाले श्लोक को ही पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ने के बाद। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा मेरे बाद। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था अर्जुन के द्वारा इस अध्याय के प्रारंभ में, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवत की भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उससे संबंध में पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो सबका क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, देवता का क्या पोजीशन है, सबके बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना। प्रकृति क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, देवता क्या है, तो इसके उत्तर में भगवान जो है वो बता रहे हैं कि, और अगले श्लोक में पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान ये जो दो श्लोक हैं इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके उत्तर में बता रहे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अपने अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के श्रम में अपने को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये नेक्स्ट श्लोक था, इससे पहले हमने कई श्लोक पढ़े है ना, कि कैसे जो है वो हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। कभी बताया गया कि अभ्यास योग युक्त न चेत सा नान्य गामी न, है ना, अभ्यास योग, अभ्यास के द्वारा है ना, तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा है ना। तो आप सबको जैसे पता ही होगा कि हम सब, हमारा क्या प्रकृति क्या है, हमारा स्वभाव क्या, हम सब कौन है, एक तरह से ये पहला प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ना। इसका क्या उत्तर है, हम कौन है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। और बताइए, और कुछ डिटेल बताइए। आत्मा, और कौन बताएंगे? कन्हैया प्रभु बताएंगे, बताइए।
हम मतलब जीव है,
हम सब
जीव
हैं। और कौन बताएंगे? मृणाल, आप कौन हैं? हम सब कौन हैं? पहले अपने आप को जानना जरूरी है ना, बताइए।
एक तरह से श्री कृष्ण के अंश हैं।
कोई श्लोक याद है आप लोगों को? कोई श्लोक बताएंगे जो इससे बता रहा है? बहुत अच्छा बताया आपने, इसके लिए एक श्लोक है भगवद गीता में, मामा युवान से जीव लोक है, जीव भूत सनातन, कि संसार में जो जीव है वो कौन है? मेरा अंश है। हम सभी संसार में जीव है ना, जैसे आपने बताया कि जीव, तो जीव कौन है? जीव भगवान का अंश है। जीव क्या है? अंश है। आत्मा, हम सब आत्मा है। क्या है?
आत्मा।
शरीर नहीं है। जैसे हम सब आईना के सामने जाते हैं तो अपने आप को निहारते हैं, देखो मैं कितना सुंदर हूं, मेरे बाल कितने अच्छे हैं ना, कहते हैं ना, और ऐसे कंघी से एकदम पूरा सजाते हैं, देखते हैं सब अच्छा दिख रहा हूं मैं, है ना। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये इल्यूजन है, मोह। क्या है?
मोह
है, ये भ्रम है। हम वो नहीं है जो आप आईने में दिखते हैं, और हम जो है वो आपको दिखता नहीं है, है ना। तो हमें हमारा स्वरूप है आत्मा का, हम सब क्या है आत्मा, और आत्मा जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का हम दास है, भगवान के सेवक हैं। और सेवक का क्या कर्तव्य होता है,
सेवा भगवान का सेवक,
किसका सेवा कर, जिस मालिक का ना, आप जिसके सेवक हैं उसकी सेवा करें। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो यही है, आत्मा परमात्मा भगवान की सेवा में लगने के लिए इसका विस्तार हुआ है। और भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आप देखिए इस संसार में हम सब प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, सेवा करने का, किसी को प्रेम करने का, है? वी आर सर्चिंग फॉर कंपेनियन ऑफ लाइफ, ट्रू कंपेनियन, जीवन साथी की तलाश, jeevansathi.com है ना, jeevansathi.com, अपना जीवन साथी चुनिए। ये सर्च फॉर ट्रू कंपेनियन ऑफ लाइफ, ये हमेशा चलता रहता है जीव का। और ये खोज जो है वो समाप्त नहीं होता है, लगता है इसके साथ अगर मैं दोस्ती करूंगा, इससे शादी हो जाएगा तो मेरे जीवन का सच्चा साथी मिल जाएगा। शादी होती है ना, और देखते हैं कि 2 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया। क्यों हो गया, क्यों? क्योंकि जिस साथी की तलाश थी वो साथी वो नहीं है। वो साथी कौन है, कृष्ण है, यू अंडरस्टैंड। और जब तक कृष्ण आपको नहीं मिल जाते तब तक आपका तलाश खत्म नहीं होगा। कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, इससे कोई बुराई नहीं है कि नहीं, ट्राई करने के देखने में क्या है। तो ये जो तलाश है हमारी, ट्रू कंपेनियन ऑफ लाइफ, ये तलाश हमारी समाप्त नहीं होती है। कई सांसारिक संबंध स्थापित करते हैं, आत्मा जो है वो भगवान को भूलकर इस संसार में जब आते हैं हम सब, तो हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि इस तथ्य का प्रमाण है, इसमें कोई ये नहीं कि कोई अंधविश्वास की बात है, ये नहीं। हर जन्म में, जब भी हमारा जन्म होता है तो उस जन्म में हम एक माता पिता मिलते हैं ना, और उस माता पिता की हम पूरी तरह से सेवा करने का प्रयास करते हैं, और फिर उस माता पिता की सेवा करते करते फिर पता चलता है कि वो माता पिता हमें छोड़ के चले गए, या कभी कभी तो हम पहले चले जाते हैं माता पिता को छोड़ के। और इस तरह से ट्रू कंपेनियन, जो हमने सोचा था कि हमेशा हमेशा जो मेरे साथ रहेगा, हमारे साथ नहीं रहता है कोई भी व्यक्ति संसार में, है ना। एक व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ रहता है, सबसे क्लोज है जो हमारे, वो कौन है, कृष्ण है। वो हमारे हृदय में, बिल्कुल आत्मा के हृदय में बैठे हुए हैं। वही एक व्यक्ति है जो आत्मा को जन्म जन्मांतर उसके साथ जाते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। तो आत्मा जब अपने 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 स्थिति को भूल जाती है, तो इस भौतिक जगत में प्रकट होती है और नाना प्रकार के संबंधों में तलाश करती है, कहाँ है भगवान, कहाँ है मेरा खोया हुआ साथी, खोजते हैं, अच्छा इस संबंध में मुझे मिल जाएगा वो प्रेम मिलेगा। जो भगवान से हमारा प्रेम है, ओरिजिनल प्रेम है, वो प्रेम की तलाश करते ढूंढते, अच्छा इससे अगर संबंध करूं तो जो जिस प्रेम की तलाश है वो मेरी पूरी हो जाएगी। और संबंध बनाते हैं लेकिन क्या होता है, टूट जाता है या कुछ दिन तक चलता है फिर टूट जाता है। और फिर क्या होता है, जितना हम उससे आसक्त हैं उतना ही हमें दुख भी होगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, आप जितना उससे आपको सुख मिल रहा है, जब वो वस्तु आपसे अलग हो जाए तो उतना ही क्या होगा, दुख होगा ना। ये संसार का नियम है और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। कोई है ऐसी वस्तु? कोई ऐसी वस्तु नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए आपने किसी से बहुत गाढ़ा संबंध स्थापित कर भी लिया तो प्रगाढ़ संबंध आपको सुख नहीं दे सकता, और अगर सुख दिया भी तो हमेशा याद रखिए कि उतना ही आपको दुख भी होगा। ये नियम है, ये नेचुरल है, ये रियलिटी है इस संसार का। तो कोई व्यक्ति अगर अपने आप को इस तत्व को इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं ये सब क्या बता रहे हैं आप, है ना, आप जो ये सब बता के हमारी आंखें क्यों खोल रहे हैं, हमें अंधेरे में क्यों नहीं रहने देते, कितना मजा आ रहा है संबंध स्थापित करके, है ना। तो व्यक्ति अंधेरे में रहना चाहता है, लेकिन अंधेरे में कब तक आप रहेंगे, किसी ना एक दिन तो आपको इस संसार का जो कड़ा सत्य कड़वा सत्य जिसको बोलते हैं, कड़वा सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे हम लोग पिछले वीक में सैटरडे को एक कॉलेज है, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं क्लास दे रहा था वहां पे छत पे, वहां पे इसी के ऊपर डिस्कस हो रहा था, मृत्यु के ऊपर, कि मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं। बाई चांस में वही टॉपिक मिल गया था और क्लास खत्म होने के बाद बताया कि उसका जो हाउस ओनर था उसके बेटे की मृत्यु हो गई। और मैंने मुझे तो नहीं पता था। इस संसार का नियम है, कौन कब किसको छोड़ के जाएगा किसको पता है, नहीं पता। तो इस ज्ञान को समझना है हम सबको, इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही अर्जुन के मोह को नष्ट किया है। अर्जुन बताते हैं, अर्जुन को भगवान बताते हैं कि असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे कथा सुन अगता सुन नानु सुचंति पंडिता। असोच्यान, असोच्यान जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हैं? अनुसोचस्तुम, तुम उसके बारे में इतना शोक कर रहे हो, इतना चिंता कर रहे हो, हैं? और इतना चिंता कर रहे हो और प्रज्ञावादांश भाषा से, और अपने आप को महान प्रज्ञावादांश मतलब पंडितों की भांति, विद्वानों की भांति बातें कर रहे हो, हैं? जैसे तुमको सब कुछ पता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हें बेसिक चीज भी नहीं पता है, हैं? हो सकता है तुम अपने आप को ग्रेट वॉरियर मानते हो, लेकिन तुम्हें तो बेसिक चीज भी नहीं पता है कि जिसके लिए सोच नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम इतना सोच कर रहे हो, विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, हाथ कांप रहा है, रो वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते जायते, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, किसके लिए, इन शरीरों के लिए, ये शरीर तो पहले था ही नहीं और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में जस्ट प्रकट हुआ है कुछ समय के लिए, हैं? तो इसके लिए तुम इतना सुख कर रहे हो, और अपने जिसके लिए नहीं करना चाहिए शोक हमें, और बातें कर रहे हो जैसे बड़े विद्वान की भांति बातें किए जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि गता सुन अगता सुन, जो जा चुके हैं या जो नहीं गए हैं जाने वाले हैं, नानु सुचंती पंडिता, इनके लिए जो व्यक्ति पंडित होता है, बुद्धिमान होता है, वो चिंता नहीं करता है। इसी से शुरुआत होती है। फर्स्ट श्लोक भगवान कृष्ण बताते हैं और फिर बताते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो शरीर है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस शरीर के अंदर एक देही है, आत्मा है। तो क्या करती हो, पर ये शरीर जो है कौमारम जौवनम जरा, कुमारावस्था बचपन अवस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था जाता है ना, और तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद अगले शरीर में प्रवेश करता है, इस शरीर को त्याग देता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए धीर तत्र न मुह्यति, जो व्यक्ति धीर है, सोबर है, बुद्धिमान है, इसके लिए मोह नहीं करता। ये सच्चाई है इस संसार की, जिसको हमें आंख नहीं बंद करना है, क्योंकि आंख बंद करने से हम अपने आप को धोखा देंगे। जैसे कि एक खरगोश जानते हैं, खरगोश रैबिट का एक गुण होता है, रैबिट के सामने अगर बाघ आ जाए ना, बाघ अगर आ गया तो पता है रैबिट क्या करता है, भागता नहीं, आंखें बंद कर लेता है। क्यों पता है, वो सोचता है कि अगर आंखें बंद कर लूंगा तो शेर दिखाई नहीं देगा, और शेर दिखाई नहीं देगा इसका मतलब शेर है नहीं, कहां है शेर, नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर क्या होता है, आंखें बंद किए हुए मुंह में चला जाता है शेर के। वही खरगोश अगर भागना शुरू करे तो शेर उसको नहीं पकड़ सकता, पता है आपको, खरगोश इतना तेज भागता है, अगर भागना शुरू करे तो इतना, एक तो छोटा है और दूसरा क्या है, तेज भागता है, है ना, शेर नहीं पकड़ सकता कभी भी खरगोश को। लेकिन ये मूर्ख अपनी पूरी पोटेंशियल जो है, उसकी क्षमता है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है, और मूर्खता करके क्या कर रहा है, अपनी आंखें बंद कर रहा है, सहज तरीका अपना रहा है मृत्यु से बचने का। तो क्या बच जाएगा वो आंख बंद करने से, बच जाएगा बताइए, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, बचेगा। आंख बंद करने के बजाय अगर उस शेर को देखे और उसके वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे और भागे तो शेर उसको नहीं छू सकता है। उसी तरह से मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जब उसको मृत्यु के बारे में बताया जाता है तो कहता है, प्रभु जी अरे क्या कर रहे हैं आप, देखो इस्कॉन वालों का यही प्रॉब्लम है, तुरंत शुरू हो जाते हैं मृत्यु के बारे में बताना, प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं आप, प्रभु जी मैं डर लग रहा है, आप मृत्यु के बारे में क्यों बता रहे हैं हमें, है ना। आंख बंद करना इसको बोलते क्या कहते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ना, आंख बंद कर रहा है, अपनी आंखों को बंद कर रहा है हरे कृष्णा, और आंखें बंद करके और सोचता है कि मृत्यु के बारे में सुनूंगा नहीं तो मृत्यु आएगी नहीं। और इसी तरह से समय बीतता जाता है और मृत्यु एक दिन आती है और महाप्रसाद गोविंद लेकिन वही मनुष्य, वही व्यक्ति अगर साधु संग में आता है और साधु संग में उसको पता चलता है इस बात का, सच्चाई का, कि मृत्यु है, मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर हम भगवान की शरण लें। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेसाम। कहते हैं कि अगर सम आश्रिता, अगर आपने आश्रय ग्रहण कर लिया है महत पदम पुण्य सुमुरारे भगवान के चरण कमलों का, अगर आपने ऐसा कि आप सब लोगों ने आश्रय ग्रहण किया इस वेश में शिष्य राधा पादशास्त्री के चरण कमलों का, जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम है? उसको ये मृत्यु, जन्म मृत्यु का समुद्र जो है, ये समुद्र है, भव सागर जिसको बोलते हैं, तरहु ए भव सिंधुरे, तो उस भव सागर से पार करने का कोई उपाय नहीं है दूसरा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और क्या कौन कौन, हिटलर, मिसोलिनी, सब उस सागर में डूब गए, डूब रहे हैं उस सागर में, कष्ट उठा रहे हैं, समय के लहरें जो है उसको उठा के यहां से वहां फेंक रही है, फिर वहां से उधर फेंकती है, उधर फेंकती है, बड़े बड़े हमारे भक्त गए थे, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने कुछ दिन पहले, अटल बिहारी से पड़े हुए बेड पे, बोले अटल जी हम आए हैं, हम आए हैं, हम इस्कॉन से आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है हमारे प्रधानमंत्री, एक समय पूरे देश को, पूरा देश इनको त्रिभुवन करे जार चरण वंदन, इनके चरणों की वंदना करता था पूरा देश, उनकी ये स्थिति है। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो हमें क्या बचाएगा, खुद ही असहाय पड़े हुए हैं बेड पे, क्या देश की रक्षा करेंगे ऐसे, क्या हमें बचाएंगे, आज मृत्यु के सामने क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। तो बड़े बड़े लोग असहाय हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और भगवान मृत्यु के रूप में आके लेके चले जाते हैं उनको, जैसे मेढक होता है ना, मेढक क्या होता है, टर 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 टर, जब बारिश होती है टर 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 टर, और टर 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 करता है, सांप को उसका आवाज सुनाई देता है, वो सांप आता है आवाज को सुनते हुए ढेर से आके टर टर करता है, सुन अच्छा ठीक है आ जाओ मुंह में, सांप मुंह में लेके निकल जाता है अंदर, उसी तरह टर 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 टर, गॉड डिज नॉट डजंट एग्जिस्ट, गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस ऑल माइथोलॉजी बोलते रहते हैं वैज्ञानिक, और एक दिन गॉड आके मृत्यु के रूप में उनको लेके निकल जाते हैं। प्रभुपाद बोलते थे इफ यू डोंट एक्सेप्ट गॉड, इफ यू डोंट वर्शिप गॉड, यू कांट अवॉइड गॉड, यू हैव टू फेस गॉड, इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी गॉड इन हिज ब्यूटिफुल फॉर्म एज श्याम सुंदर त्रिभंग ललितम थ्री फोल्ड ब्यूटिफुल फॉर्म, देन ही विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू इन अ वेरी डेडली फॉर्म एज ए डेथ। नाउ इट्स अप टू अस व्हिच फॉर्म वी वांट टू फेस। ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू फेस द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, बट ए नॉन डिवोटी लाइक डेमन ही वांट्स टू सी लॉर्ड इज डेथ। सो कृष्णा से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् हम, एज यू अप्रोच मी आई रिवार्ड यू अकॉर्डिंगली, इफ यू वॉन्ट टू लव मी देन आई विल लव यू, बट यू वॉन्ट टू हेट देन यू विल सी माई फियर्स फॉर्म, ये आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे आपके साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हूं। तो ये भगवान, जो भक्त भगवान की शरण लेते हैं वो इस मृत्यु के संसार से बच जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हजारों हजारों करोड़ों वर्षों से, जन्मों से हम उलझे हुए हैं। आप अटलांटिक ओशन में गिर गए हैं, पूरा बीच में गिर गए हैं, डूब रहे हैं, हैं? डूब रहे हैं, दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं है। क्या उपाय है? कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। अज्ञानता बस हम सोचते हैं नहीं, हम तो दुखी नहीं है, दुखी नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी दुख ना हुआ हो? डेली होता है, यस, रोज। पदम पदम विपदाम, हर स्टेप देयर इज डेंजर। हमारे शरीर के अंदर ये शरीर दुखों की खान है, खजाना है दुखों का। हेड एक, टूथ एक, बैक एक, स्टोमक, पता नहीं कौन कौन सा एक बना रखा है। यस, सो मेनी एक्स। दिस बॉडी इज इज अ स्टोर हाउस ऑफ सफरिंग। एक दांत आपको इतना दुख दे सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हमें सोचना चाहिए कैसे इस हमेशा हमेशा के लिए कैसे छुटकारा प्राप्त करें। तो बताते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, इतना आसान है। भगवान के चरणों की शरण लीजिए। हम सोचते हैं ये क्या होगा, ये तो मूर्ति है, एक फोटो की शरण लेने से, हम फोटो को आरती दिखाने से क्या हम दुखों से बच जाएंगे? हमें विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डाउट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कंडीशन सोल। इसीलिए जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तार दुख नाई। जीवा, अगर तुम्हें यह विश्वास हो जाएगी तुम कृष्ण के दास हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं होगा, 100% गारंटी। तो हम भगवान की शरण न लगे, ये क्या, ये क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इनको दिखाने से क्या फायदा, इससे अच्छा है मैं एक घंटा पढ़ लूंगा तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो अच्छा होगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो अच्छा पैसा मिलेगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये अगरबत्ती दिखाने से टाइम वेस्टेज, हम ऐसा सोचते हैं। आप देखो हजारों करोड़ों लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लाके रो रहे हैं, जेल के अंदर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जेल के अंदर पड़े हुए हैं, बड़ा समय बचाया। प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल दिया, क्या बड़ा पोस्ट मिला, लेकिन कहां है, अभी दुखों के सागर में डूबा हुआ है। दुख पता है कितना दुख हो रहा है उसको, अभी तो कौन सा, क्या पैसा बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। हम सोचते हैं ये सब क्या बेकार की बातें डिस्कस हो रही है, पैसा बचाना, हम लोग, ये तो सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है उसको ये दुख परेशान नहीं करते, वो इनसे परे हो जाता है। इसका अगर आपको एहसास करना है तो आप भक्ति करके देखो कैसे भगवान आपकी रक्षा करते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, माया उनको छू नहीं सकती, दुख उनको छू नहीं सकते। और अगर दुख हुआ भी तो ये अंतिम जीवन होगा दुखों का, इसके बाद कोई दुख नहीं। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगर कुछ दुख होता भी है वो कम होगा, अगर आपको बहुत ज्यादा होना है तो थोड़ा होगा, उसका इंटेंसिटी को कम कर दिया जाता है। अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ होना है तो आपका एक्सीडेंट होगा लेकिन थोड़ा सा खरोच आएगा, इस तरह से कहते हैं इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो हम सोचते हैं ये सब समय की बर्बादी है, क्या कर रहे हैं ये सब, क्यों इतना समय बर्बाद कर करना, चैंटिंग क्यों करना है, ये सब तो वेस्ट है टाइम, इससे अच्छा है थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिना, नते विदु स्वार्थ गति, उनको पता नहीं है। मूर्ख व्यक्तियों को पता नहीं कि मेरा असली स्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, क्या मेरे लिए अच्छा है, पता नहीं। दुराशया ये बहिरर्थ माने, दूसरे चीजों का शरण ग्रहण करते हैं, सोचते हैं मुझे पैसा बहुत मिल जाएगा, बैंक बैलेंस अकाउंट बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पूरे देश की सेना है लेकिन मिल के भी, इतने देश का पूरा पैसा मिल के भी अटल बिहारी वाजपेयी को कोई खुशी नहीं दे सकता, दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो हम दुखों के सागर में गिरे हुए हैं, इस दुखों से हम ये नहीं, हम खुश नहीं होना चाहिए हमें बहुत ज्यादा। जो व्यक्ति संसार को जानता है, नेचर को, कुछ हमेशा ये समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। कितने भी बड़े लक्ष्य को आप हासिल कर लो, आप खुश नहीं हो सकते। लेकिन जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, वो इस संसार में रहते हुए भी सुखी रहेगा, और इस जीवन को, इस शरीर को त्यागने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम में वापस चला जाएगा। फिर उसे दोबारा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन, एक बार शरीर त्याग देगा तो दोबारा इस संसार में दुख सागर में जन्म नहीं होगा उसका। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको जरूर, उनको लगता ही नहीं कि मुझे बाहर जाना चाहिए संसार से। सोचते हैं ये भी, ये बढ़िया जगह है, बड़ा अच्छा है, क्या दिक्कत है, यहां पे कोई जाना ही नहीं चाहता। ये ऐसा जेल है जिसमें कोई दीवार नहीं है। आपने देखा कोई ऐसा जेल जिसमें कोई दीवार ना हो? नहीं देखा ना। ये संसार का जेल है, इसमें कोई दीवार नहीं है, कोई हथकड़ी है, कोई हथकड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों? जेल की फैसिलिटी में फंसे हुए हैं। जेल में इतनी अच्छी फैसिलिटी है और उसमें भूल गए हैं बाहर क्या थे, वो भूल चुके हैं। आध्यात्मिक जगत में जाने से कितना आनंद है उसको हम भूल चुके हैं, और इस संसार के क्षणिक आनंद से आसक्त हो जाते हैं। चपल सुखल अवर लागी रे, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुखल अवर लागी। क्षणिक सुख के लिए क्या कहते हैं, शीत आतप वात वरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। शीत ठंडी, थर थर कांपने वाली ठंडी, उसमें जाते कि नहीं, ऑफिस जाते कि नहीं, बाइक पे जाते हैं ना, कितना भी ठंडा हो आप ऑफिस जाओगे कि नहीं, जॉब लगेगा तो जाना पड़ेगा। शीत और आतप, दिल्ली में देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उसमें भी देखिए लोग बाइक पे जा रहे हैं ऑफिस। और वात, आंधी हो या तूफान हो, वर्षा वरीषण, आप देखिए बारिश हो रही है, कई लोग जाते हैं बारिश में भी बैठ के जाते हैं ऑफिस कार्य पे जाते हैं। दिन रात, रात में भी काम करते हैं बीपीओ में, कर रहे कि नहीं, कई शिफ्ट है और हर सप्ताह शिफ्ट चेंज होते रहता है, कभी 6 से 2, 2 से 10, फिर 10 से 6, शिफ्ट चेंज हो रहा है रात दिन, वर्किंग हार्ड लाइक एस। और इतना सब पद सुख क्या है, चपल सुख, थोड़ा सा सुख है, वो क्या सुख है, क्या सुख है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, दैट्स ऑल, आहार निद्रा भय और मैथुन, चपल सुख। इसके लिए हार्ड वर्क और बार बार इतना ज्यादा कार्य करते हैं, एक ड्रॉप सुख मिलता है। जस्ट लाइक अब ये हमारे इस संसार में जी की वही स्थिति, एक व्यक्ति था, एक बार जा रहा था, दौड़ रहा था, तभी उसको पीछे से एक बाघ दिखाई दिया, बाघ, तो बाघ उसको दौड़ पीछा करने लगा उसको खाने के लिए, वो भाग रहा है, भाग रहा है, पीछे से शेर जो है उसको पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, भागते 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 दौड़ते दौड़ते वो गया एक पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ा तो देखा शेर पीछे से आ रहे पहाड़ पर। जब पहाड़ के सबसे ऊंचे सबसे ऊपर पहुंच गया, देखा अब आगे जाएगा तो नीचे खाई दिखाई दे रही, खाई है। अब क्या करें, पीछे बाघ आ रहा है, आगे खाई है, आगे जाए तो भी मृत्यु, पीछे जाए तो 100% मृत्यु, क्या करें। सोचा चलो कूद जाते हैं, हो सकता है नीचे अगर पानी हो खाई में तो कम से कम चांस है बचने का, पीछे जो आ रहा उसे तो कोई चांस नहीं है। और क्या किया, कूद गया, कूद गया तो जब नीचे गिर रहा था तो कुछ मधुमक्खियों ने ना उधर छत्ता लगा रखा तो उसमें हाथ उत लग गया, मधुमक्खियां गुस्सा में हो गई, उसको काटने लगी, वो नीचे गिर रहा है। तभी उसको एक जो पहाड़ था उसमें से एक पेड़ का जो है ना टहनी निकला हुआ था, उसको गिरते गिरते पकड़ लिया उसने, पकड़ के लटक गया। लटक गया तो क्या देख रहा है, नीचे झांक के देख रहा है नीचे क्या है। तो नीचे देखा कि एक घड़ियाल ऐसे मुंह खोल के तैयार है, ऊपर बाघ ऐसे मुंह खोल के तैयार है, नीचे घड़ियाल मुंह खोल के तैयार है, और ये टहनी पकड़ के लटका हुआ है, और मधुमक्खियां आगे काट रही है, काट रही है। और जो टहनी पकड़ के सडनली क्या देखता है कि टहनी जो है उसको दो चूहे जो है वो काट रहे हैं, कुतर रहे हैं धीरे धीरे, एक ब्लैक चूहा और एक व्हाइट चूहा, एक उजला चूहा और एक काला चूहा, काट रहे हैं धीरे 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 काट रहे हैं। और जैसे ही चूहे चूहों का अपना पीरियड है, इतने दिन में काट देंगे उसको, क्योंकि टहनी की कितनी मोटाई हो तो फिक्स है उसको, जैसे ही कटेगा तो नीचे गिरेगा, सीधे कहां जाएगा, घड़ियाल के मुंह में, है ना। तो ये है हम, तभी क्या होता है, तभी ऊपर देखता है, ऊपर जो है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे एक बूंद जो है शहद गिरता है, और ये क्या करता है, इसे जीभ निकाल के और उस शहद का आनंद लेने में इतना मग्न हो जाता है कि पूरा भूल जाता है सारे दुखों को। यही है इस संसार का सुख, चपल सुख, हार्ड वर्क, डे एंड नाइट स्टडी करने के बाद मिलता है जॉब, मिलता है। हम सोचते हैं अरे बड़ा डिग्री मिल गया, बड़ा डिग्री मिल गया, अब डिग्री मिल गया तो क्या करें, डिग्री मिल गया बहुत खुशी होती है, सेलिब्रेशन होता है, अब जॉब लगेगा, जॉब के लिए अब स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब फिर चिंता, प्रभु ये डिग्री तो मिली लेकिन जॉब नहीं मिला, अब जॉब के लिए एकदम परेशान, जैसे हमारे शिव कुमार प्रभु हैं, है कि नहीं, परेशान, हम इंजीनियरिंग के लिए पहले परेशान, पहले इंजीनियरिंग में एंट्रेंस के लिए परेशान उसके बाद जब एंट्रेंस मिल गया तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए परेशान, जब इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई तो फिर बाहर जॉब के लिए परेशान और जब भी इमीडिएट गोल जो है वो प्राप्त होता है तो बड़ा खुशी मिलता है, लेकिन कब तक, थोड़े देर के लिए, चपल सुखल बोला गिरी, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा आपको एंजॉयमेंट होता है उसके बाद एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है फिर से, अब इसको पार करो, और फिर जब उसके लिए प्रयास करते हैं फिर वो सफलता मिलती है, फिर नेक्स्ट, और जब 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 जॉब लगता है तो बड़े बड़े डेडलाइंस हैं, 18 घंटे 12 घंटे काम करना है आपको, जॉब करना है, हाँ, और इतना मेहनत करते हैं, और इन सब के बदले में क्या मिलता है, चपल सुख, और इस ये एक ड्रॉप हनी, ये जो चपल सुख है ये हमें जन्म जन्मांतर तक इस दुख सागर में बांध के रखता है, जन्म जन्मांतर तक, ये एक बूंद जो जो हानि है वो है सुख, मैथुन सुख, सेक्स प्लेजर, टंग प्लेजर और सेक्स प्लेजर, ये दो सुख है, मेन सुख है संसार का, कितने देर का क्षणिक सुख होता है, ये हमें बांध के रखता है, यही इस संसार की हथकड़ी है, साइकल्स, साइकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, साइकल्स ऑफ सेक्स लाइफ जो है हमें इस संसार में बांध के रखता है, क्या करता है, आपको बांध के रहेगा, आसक्त, भगवान को याद करने में बाधा है। ये यन मैथुनादि तुच्छम, ये जो मैथुन सुख है ये तुच्छ सुख है, इसके पीछे पागल है पूरा संसार। और कितना क्या सुख है इसमें, क्षणिक सुख। और कोई इससे संतुष्ट हो पाया है आज तक? कोई भी व्यक्ति इससे संतुष्ट हो पाया है? नहीं। और ये जो आसक्ति है हृदय की ग्रंथि, ये बांध के रखती है जीव को इस संसार में। और क्षणिक सुख, और उसके बाद निभाते रही है जिम्मेदारियां जन्मांतर तक। ये जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी खत्म होगी उससे पहले माया विल मेक श्योर दैट इट शुड हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या करना है इसी स्थिति? तो ये है, तो ये क्या है, इस उदाहरण से क्या सीखते हैं? ये चपल सुख जो क्षणिक सुख है ये इस संसार का, वो यही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी वर्क सो हार्ड। ये जो बाघ है, बाघ किसको रिप्रेजेंट करता है? बाघ हमारी कहानी में जो बाघ था है, ये कर्म है हमारे पिछले जन्मों के कर्म। वो कहते हैं जिसको प्रारब्ध, प्रारब्ध आ रहा है हमें दुख देने के लिए। पिछले जन्म जो हमने पापपूर्ण कर्म किए हैं वो क्या है, कब दुख देगा आके हमें पता भी नहीं। एक्सीडेंट के रूप में आ सकता है, कल गए मान लीजिए आप, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन क्या गारंटी नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाए, एक पैर कट जाए, कौन आएगा आपको साथ देने, बताओ? पता है आपको, इस स्थिति में अगर हम पड़ जाए, क्योंकि मैं सोचता हूं मान लो आज मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, लेकिन कल अगर कृष्ण का हाथ मेरे सिर से उठ जाए, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, क्या होगा मेरा स्थिति बताओ? दया का पात्र बन के रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि नहीं? बोझ बन जाएंगे हम, फिर देखना संसार का रूप, फिर देखना संसार का भयावह रूप, कौन प्यार करता है कितना, सच्चाई क्या है इस संसार की। भगवान अगर अपना हाथ हटा लें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये कृष्ण की कृपा है, हम सही सलामत हैं अभी तक इस संसार में, हमारे सारे अंग सही सलामत है अगर, तो ये भगवान की असीम कृपा है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए उनको, उनकी शरण में आनी चाहिए और उनसे प्रार्थना याचना करनी चाहिए। तो ये बाघ है, प्रारब्ध है हमारे, बड़े बड़े प्रारब्ध छोड़ रखे हैं माया ने। जिस दिन भगवान का वरदहस्त हमारे सिर से हट जाएगा, हजारों बाण तैयार हैं आके उड़ाने के लिए हमें। जैसे महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो अर्जुन कृष्ण जो है वो बोले, अर्जुन बोले कि कृष्ण को, क्या आप उतरो पहले रथ से, क्योंकि कृष्ण क्या थे, सारथी थे ना, रथ चला रहे थे, तो सारथी सबसे पहले उतरता है रथ से, है ना। तो सारथी, तो कृष्ण बोले कि नहीं पहले तुम उतरो। तो अर्जुन बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पहले आप उतरो। भगवान बोले नहीं पहले तुम उतरो। तो उतर के बोले थोड़ा दूर हो जाओ, उधर चले जाओ। उसके बाद कृष्ण जब उतरे तो जैसे ही कृष्ण उस रथ से उतरे, वो पूरा का पूरा रथ धड़ाम से उड़ गया, बिल्कुल ब्लास्ट हो गया एकदम। तो कृष्ण ने बताया, अब समझ में आया कि बोला मैं तुम्हें पहले उतरने के लिए, क्योंकि मैं उस रथ पे बैठा था इसलिए तुम सुरक्षित थे। कई लोगों ने ब्रह्मास्त्र और क्या क्या अस्त्र छोड़ रखे थे तुम्हारे रथ पे, अब तक तुम खत्म हो गए रहते अगर मैं वहां ना होता। उसी तरह से हम सब भगवान के संरक्षण में हैं तो सुरक्षित हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचे हुए हैं, बच सकते हैं। भगवान बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे, जब तक हम उनके संरक्षण में हैं। जिस दिन भगवान ने बोल दिया ठीक है अब तुम्हें माया के संरक्षण में छोड़ता हूं, उस दिन आप देखना क्या हालत होगी। तो ये भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर। तो ये प्रारब्ध जो है वो उसी तरह से हमारे पीछे पड़े हुए बाघ की तरह, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। और ये जो जो दो मधुमक्खियां हैं, ये क्या है? मधुमक्खियां, इसको बोलते हैं अधिभौतिक क्लेश। ये है हमारे दुश्मन इस संसार में, दुश्मन कई रूपों में, कभी अपना व्यक्ति भी दुश्मन हो सकता है, पता है? जिसको हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं, एक्चुअली ही कैन बी आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। पता है कैसे? मान लीजिए, आप एक उदाहरण देता हूं, एक एक व्यक्ति का बच्चा बच्चा हुआ, सात दिन का था बच्चा, तो सात जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, 9 महीने तक तो गर्भ में रहा, जैसे ही बाहर निकला उसको इतना बड़ा रोग था, उसको डॉक्टर के पास ले गए हॉस्पिटल में, 7 दिन में उसके ऊपर 10 लाख रुपया लगा और 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब बताइए, वो पुत्र है या दुश्मन है? था, कौन था वो, दुश्मन था या पुत्र था? जिसने एक तो 9 महीने गर्भ में रहकर इतना कष्ट दिया, उसके बाद जन्म लेते ही आपका 10 लाख रुपया चुरा के ले गया, वो कौन था बताइए? आप कैन यू से दैट ही इज योर फ्रेंड? ही इज एनिमी। लेकिन माया का बंधन ऐसा कि अरे ये तो मेरा अपना बेटा था, वो कर्म है आपका, कर्म है, ये कर्म पीछे से आया, आपका 10 लाख गायब करके वो भी चला गया, और जीत गया तो वो दुख देके गया, क्योंकि आप उसको अपना बेटा मान रहे हैं, और वो जो है आपको क्या किया, अब आसक्ति कर ली आपने, एक्सपेक्टेशंस बना ली, वो आपके एक्सपेक्टेशन तोड़ के चला गया। इस तरह से इस संसार का नियम चलता है, ये प्रारब्ध है। ऐसे प्रारब्ध जो है कई प्रकार से आते हैं, इसलिए आप देखो आज संसार, मुझे तो, मैं तो संसार में नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं होता इन प्रारब्धों का ज्यादा, क्योंकि भगवान की कृपा से, आई डोंट नो, वी आर रियलाइजिंग दिस, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रारब्ध मेनी वेज, कई प्रकार से हम बचे हुए हैं प्रारब्ध से, हमें समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जब आप संसार में आप लोग हो, आप लोगों को पता, आप लोग रियलाइज कर सकते हो कितने कष्ट है, कितना मेंटल एंजाइटी, कितना फिजिकल एंजाइटी, कितना स्ट्रेस है, कितना बर्डन है। आसान नहीं है इस संसार में जीवित रहना, इस संसार में सर्वाइव करना, इज इट इजी? नो, इट्स नॉट इजी। सो टफ कॉम्पिटिशन, 5 लाख लोग बैठते हैं और 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं और 4,99,000 रोते हैं, इज इट इजी? सो स्ट्रगल। और उसके बाद भी अगर आपको सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कई प्रकार के टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो प्रारब्ध आपको अलाउ नहीं करेंगे सुखी रहने के लिए संसार में, माया आपको अलाउ नहीं करेगी। तो ये जो सगे संबंधी, दुश्मन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कई प्रकार से टेररिस्ट, चोर, या हो सकता है कई बता रहे थे ना कि एक जीरो गलत डाल दिया उसने, ऐसे जीरो उनका बैंक अकाउंट में क्या हुआ, पैसा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कितना पैसा था उसमें,
जीरो भूल गया, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर है,
हाँ,
जीरो बीच में छोड़
दिया, अब वो जीरो छोड़ दिया, अब इसे कितना समय लग गया उसके लिए,
3-4 महीने
हो गए, नाउ ही इन एंजाइटी, वो जीरो आपके ही क्यों छोड़ा उसने बताइए, आपसे क्या उसको स्पेशल अफेक्शन था, क्यों जीरो छोड़ा, इसी और प्रारब्ध, प्रारब्ध ने उसको जाके उसको कंफ्यूज कर दिया, अब इसका जीरो हटा दो थोड़ा, 3 महीने आई वांट यू टू सफर, क्योंकि आपने कुछ कर्म किए होंगे वैसे पिछले जन्मों में, यस, आपके साथ क्यों हुआ, किसी और के साथ का ये कर्म है प्रारब्ध है। जैसे बताया जाता है कि जैसे गायों की बहुत बड़ी अगर झुंड है, तो उसमें जो बछड़ा जो है वो कितनी बड़ी झुंड हो गए अपनी मां के पास जाके पहुंच जाता है, उसी तरह से कर्म है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के हैं, लाखों लड़के हैं, लेकिन वो चुन लेगा, ये मेरा कर्म है, ये व्यक्ति है जिसने कर्म किया था, ये मेरा अपना है, वो आपको जाके पकड़ेगा, बिल्कुल चुकता कर देगा, यही तो कर्म। और इसमें क्या होता है, तो ये कहते हैं प्रारब्ध छोड़ता नहीं है, आप बच नहीं सकते। और मधुमक्खियां जो हैं, ये सब अपना काम कर रही है, काट रही हैं, इधर से फोन आ रहा है, तुम ये क्यों नहीं करते, उधर दोस्त परेशान कर रहे हैं, कोई कमेंट मार रहा है, कोई जो है वो टांग खींच रहा है, कोई जो है वो कुछ बोल रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, कोई आपका जो है वो बैक बाइटिंग कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब मधुमक्खियां हैं। अगर पारिवारिक जीवन में है तो फैमिली पॉलिटिक्स अलग ही होता है कि नहीं, सास और बहू की कहानियां है कि नहीं, जितने सीरियल बने हुए हैं, फैमिली पॉलिटिक्स है, सोशल पॉलिटिक्स, और राइट हो गया, दंगे हो गए, उसमें टेंशन, एंग्जाइटी, इनकम टैक्स प्रॉब्लम, सो मेनी टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है। अगर इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए तो हजारों हजारों की तादाद में समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। यस, वी ऑल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, इट्स अ फैक्ट। यस, और ये बाइटिंग कर रहे हैं, इधर से इधर से काट रहे हैं, इधर से अभी आप इधर का हटाया नहीं कि इधर से काट रहा है, इधर का हटाने चले तो इधर से काट दिया, है ना। अरे परेशान, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड पीपल आर स्ट्रेस्ड, सो मच स्ट्रेस। अभी बता रहे थे कोई कि एक वो उनका दीव में रूममेट है, वो बिहार से है, अब बिहार से तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा है कॉलेज में, तो उसके फ्रेंड जो क्या करते हैं उसको इंसल्ट करते हैं, ही डजंट फील कंफर्टेबल इन क्लास, दिस इज ऑल्सो बाइटिंग, मधुमक्खियां, वो परेशान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक क्लेश है, ये सब परेशानियां हैं, ये कहते हैं। और नीचे जो घड़ियाल है मगरमच्छ, वो क्या है, डेथ। और वो टहनी क्या है जिसको पकड़ के वो व्यक्ति लटका हुआ है, टहनी, दैट इज दिस बॉडी, बॉडी बॉडी शरीर। और दो चूहे जो काट रहे हैं उस शरीर को, वो कौन है, दिन और रात। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, आपका दो दिन, एक दिन कम हो गया आपके लाइफ से, हो कि नहीं, उतना क्लोज आप डेथ के चले गए। ये शरीर दिन पर दिन क्या हो रहा है, वृद्ध हो रहा है कि नहीं। समटाइम्स आई थिंक माई हेयर्स आर नाउ ग्रोइंग ओल्ड, आई एम बिकमिंग व्हाइट, वेरी सुन डेथ इज गोइंग टू कम, मृत्यु आएगी, हम मृत्यु आने वाली है, नहीं कि नहीं नहीं आपको मृत्यु आएगी, मुझे नहीं आएगी, मैं स्पेशल हूं, नहीं, सबको आनी है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये, और इसी बीच में क्या होता है, मधुमक्खियों के छाते के बीच से क्या होता है, एक बूंद का हनी मधुमक्खियां गिरा देती हैं, चलो फंसे रहो इसमें, और हम उसमें आंख बंद करके, हाँ चलो बड़ा आनंद है इस संसार में, वेरी नाइस, मजा आ रहा है, लगे रहो। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसी स्थिति में हमें, जबकि और इससे बचने का उपाय भी नहीं है, फंस गए हैं तो अब जल्दी निकलना भी मुश्किल है, जल्दी आसान नहीं है इसे निकलना, तो कैसे निकलें, इसका तरीका क्या है। तो इसीलिए इसमें बताया श्री प्रभुपाद ने, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है आप लोग के सामने, मैंने श्लोक पढ़ा था, जो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान का चिंतन, माम अनुस्मर युद्ध, भगवान का हृदय में चिंतन करना सीखना है। कितने लोग, हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, करते हैं भगवान का चिंतन, मृणाल जी जीवन दिन में कितने घंटे हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं,
जब जब दुख आता है,
जब जब दुख आता है, बस। तो भगवान की दया है अगर हमारे ऊपर दुख डालते हैं तो, ताकि हम उनका चिंतन कर सके, नहीं तो वैसे हम कभी नहीं करते। यस, तो इसलिए हमें
सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस अभ्यास है ना, अभ्यास करना है हमें। ये भगवान को स्मरण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप लोगों के ऊपर जोर दिया था इतना कि आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट रहें। सुबह सुबह अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो है आपको भगवान के स्मरण दिलाएगा। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया तो आपको भगवान के आपको भगवान का शेल्टर मिलेगा, आश्रय मिलेगा। भगवान आपको हस्त अपना बरद हस्त लगा के रखेंगे। तो अगर हम आपको बोलते हैं कि आप आरती करो तो मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, वो सोचता है इससे क्या मिलेगा मुझे, किससे मिलेगा आपको। अगर भगवान आपको अपना बरद हस्त हटा दे तो कुछ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने बल पे क्या कर सकते हो इस संसार में, चारों तरफ से कई प्रकार के दुश्मन दुख देने के लिए तैयार है, क्या कर सकते हैं आप। तो जो व्यक्ति आपको बचा रहा है, जिसने सब कुछ व्यवस्था की हमारे जीवन में, हमारा शरीर का निर्माण किया, हमारा अस्तित्व बनाया, खाने की व्यवस्था की है, चांद सितारा सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाई जिसने हमारे लिए, क्या हम उसके लिए दो तीन घंटे दे रहे हैं तो क्या ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो भगवान तो बताते हैं कि तुम्हें हमेशा मेरा चिंतन करना चाहिए। अनन्य चिंतन तुम आम ये जना परिपास थे, अनन्य चिंतन ऑलवेज तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत युक्ता नाम चौबीसों घंटे हमें भगवान की भक्ति में रखनी चाहिए। लेकिन हम उस लेवल पे तो है नहीं अभी कि उतना कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा आप 24 घंटे करो तो आप बोलोगे प्रभु जी मुझे ये है वो है, ये करना है वो करना है कि नहीं, पढ़ाई करनी है ये करना है, तो इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम अस, कृष्णा ऑल्सो नोज दैट नेदर फॉर इज गिविंग डिस्काउंट, दिवाली ऑफर, कलियुगा ऑफर। तो क्या ऑफर है दिवाली में, दिवाली में ऑफर यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो लेकिन आप शुरू में सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम करो, मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रिक्ट रखो, ये दिवाली ऑफर है। अगर आपने सुबह के दो तीन घंटे अगर कर लिए भक्ति तो पूरा दिन आपको गारंटी दिया जाता है भगवान के द्वारा कि भगवान आपकी आपको पूरा दिन, अगर आप भौतिक कार्य में लगते हो, आपका जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है, स्टूडेंट लाइफ है, उसमें पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिए, लेकिन ज्यादा स्वार्थी मत बनिए, ग्रीडी मत बनिए। ग्रीडी का मतलब समझते हैं, एक किसान था, वो किसान जो था उसके पास एक मुर्गी थी और मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, तो उस किसान ने क्या किया, उसको खिलाना पड़ता था मुर्गी को, तो उसने सोचा कि मुर्गी अंडे तो पीछे से देती है ना, अब खिलाना आगे से पड़ता है, तो ऐसा करता हूं कि अगर मुर्गी को काट देता हूं, अगर मैं बीच से जो आगे का भाग जिसे खिलाना पड़ता है उसको फेंक देता हूं, केवल पीछे का भाग रखूंगा जिधर से कि अंडे आते हैं, तो अंडे भी आएंगे और खिलाना भी नहीं पड़ेगा। बड़ा अच्छा आइडिया है कि नहीं, इसको बताया अर्ध कुकुट न्याय। तो उसने क्या किया, मुर्गी को काट दिया और अंडे का इंतजार कर रहा है, अब आएंगे अंडे। उसी तरह से हम क्या सोचते हैं कि अरे दो तीन घंटे सुबह तो हमें देना पड़ता है, कितना अच्छा रहता अगर वो दो तीन घंटे को काट, उसमें से आधे घंटे या एक घंटे काट कटौती कर लेते, थोड़ा कटौती करके थोड़ा पढ़ाई कर लेते और ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा अंडे आ जाते। मतलब अंडे का मतलब है कि ग्रेड या क्रेडिट या मार्क्स जो भी आप बोले, दैट इज अंडे, हमारे लिए तो गोल्डन अंडे भाई है कि नहीं। क्योंकि तो हम ये नहीं पता है कि ये जो अंडे दे रही है मुर्गी, वो ये दो तीन घंटे जो हम भक्ति कर रहे हैं इससे जो हमारा सुकृति अर्जित हो रहा है उसी के बल पे हमें जो भी कुछ भी सफलता या असफलता मिलेगी। प्रारब्ध आप बना रहे हो, अपना क्रिएट कर रहे हो, कर्म का निर्माण कर रहे हो आप भक्ति करके, भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। आप अपने बल पे अंडे नहीं प्रकट कर सकते आप करने, आपकी बुद्धि क्या होगा, एक मिनट में आप जाओ एग्जाम में भगवान स्विच ऑफ कर देंगे आपका, क्या करोगे आप, आपको याद ही नहीं आएगा। या आप पढ़ाई करते जा रहे हो, वहां पे गए कोई और क्वेश्चन आ गया, आपने जिसकी सोचा भी नहीं होगा। भगवान का कई तरीके हैं आपको खेल करने के लिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने लिख के आए और जिसने कॉपी एग्जामिनर का मूड खराब है उसने काट दिया सारा खत्म, आप कंप्लेन करते रहिए यूनिवर्सिटी में, करते रहिए कंप्लेन। सो मेनी वेज कृष्ण कंट्री, लेकिन कई बार ऐसा हो अगर आपके कृष्ण प्रसन्न है तो आप आगे निकलते जाओगे, कितना भी बड़ा चैलेंज रहेगा ऐसा होता है, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। वी आर नॉट टेलिंग समथिंग लाइक वेग थिंग, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू इन ऑल सर्कमस्टांस इफ यू हैव फेथ, यू हैव फेथ, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, दैट्स ऑल। दोज हू हैव डाउट कृष्णा गो अवे फ्रॉम देम, दोज हू हैव फेथ कृष्णा इज जस्ट नियर, जस्ट नियर वॉचिंग एवरीथिंग। एक हमारे भक्त थे बेंगलोर में, तो बड़े दुखी थे जब मैं बेंगलोर में बेस में था उस समय, उनको 5,000 सैलरी देता था जिस जहां जॉब करने जाते थे, टीचिंग करते थे, और बड़े दुखी थे और इतना काम कराता था 15 घंटे, तो मुझसे बड़ा बोलते थे। एक दिन रात में मैं बेस इंचार्ज था वहां पे, तो मैं बोला, मैं एक दिन रात को उठा तो देखा कोई माला कर रहा है हरे कृष्णा, तो रूम में गया तो देखा कोई कौन है, ऊपर से कंबल ऐसे डाल के ऐसे बैठे हुए और हरे कृष्णा कर रहे 2 बजे रात को। तो मैंने बोला क्या हो गया, क्या हो गया आपको, तो बेचारा रो रहा है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, तो बोला कि मेरा बॉस ने आज गाली दिया मुझे, और उसने बोला इस्कॉन के बारे में बुरा बोला, तो मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया, तो रो क्यों रहे हो, तो बोल रहा है मेरे घर का कैसे चलेगा वो सोच रहा हूं। मैंने बोला तुम सोच क्यों रहे हो, भगवान के ऊपर जब तुम निर्भर हो तो तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो, भगवान पे तुम्हें विश्वास नहीं है, तो बड़ा प्रयास करने लगा जॉब का, जॉब मिलता नहीं था उसको, तो बड़ा उदास हो गया। तो फिर हम लोगों ने एक दिन इसी तरह से, लेकिन बड़ा अच्छा भक्त था, भगवान जगन्नाथ जी की बड़ा अच्छा स्वागत था, हमारे देश में जगन्नाथ जी के विग्रह थे, बड़ा रोज सुबह सबसे पहले उठता था, मंगल आरती सब एकदम जगन्नाथ जी की सेवा करना, भोग लगाना सब करता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला कि तुम चिंता मत करो, है ना, भगवान तुम्हारे लिए है ना व्यवस्था करेंगे। जब नास्तिकों के लिए भगवान खाने पीने की इतनी व्यवस्था करते हैं तो क्या अपने भक्तों के लिए नहीं करेंगे। उसका इंग्लिश बहुत पुअर था, लैंग्वेज भी उतना स्ट्रांग नहीं था उसका, और 2 महीने के बाद जो है 2 महीने के अंदर उसको 2-2 ऑफर लेटर आए जॉब के, है ना, और फिर उसको चुनना, फिर मुझे पूछा प्रभु जी क्या करूं, कौन सा जॉब करूं, है ना। तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम चिंता कर रहे थे ना, है? चिंता कर रहे थे ना, तो भगवान ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, कई बार। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव में एक भक्त थे, तो रिसेशन आया था, तो उनको कंपनी ने एक दिन गया ऑफिस में बोल दिया 1 सप्ताह के अंदर आप छोड़ दीजिए जॉब। आईआईटी से एमटेक किया था उन्होंने, बड़े परेशान, डिप्रेस, माला उला भी नहीं करना बंद कर दिया उन्होंने, माला भी नहीं करते थे ठीक से। तो मैंने बोला तुम्हें चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान है ना तुम्हारे से। तो बोला कि हाँ प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कीजिए, है ना। तो मैंने बोला आशीर्वाद दूंगा, लेकिन हो सकता है आशीर्वाद के बाद तुम भक्ति छोड़ दो। कई बार सुख आता है ना, आशीर्वाद तो हम दे देते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद से क्या होता है, आपको भौतिक सुख मिलता है, वो भौतिक सुख आपको भगवान की भक्ति से दूर ले जाएगा, ये हमारा अनुभव है, बता रहा हूं अनुभव है। तो उसको क्या हुआ, उसको फिर उसको भी 2 ऑफर आया 2 महीने के अंदर, एक इसरो में और एक IOCL में जॉब लगा उसको। अब फिर वो मुझे पूछा प्रभु जी क्या करूं मैं, कहां ज्वाइन करूं? तो मैंने उसको बोला तुम इसरो में ज्वाइन। नहीं प्रभु जी मैं सोच रहा हूं IOCL। फिर बोला ठीक है IOCL में कर लो। और उसके बाद वो मंदिर दिखता ही नहीं है आज, अभी आता ही नहीं मिलने, कभी कभी ओकेजनली दिख गया। तो उसको हेल्प किया मैंने या उसका गलत किया मैंने, उसको भगवान से प्रार्थना करके गलत हुआ ना, वो भक्ति से दूर जा रहा है। तो इसलिए हमें भगवान हमें सुख देना उनके लिए मुश्किल नहीं है, यू कैन गिव यू प्लेजर सो मेनी वेज। पर देखते हैं कि ये इसको अगर सुख देंगे तो ये मुझे भूल जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को गरीब रखते, सुदामा को गरीब रखा था जानबूझ के। सुदामा को जब दुख दिया, सुदामा जब गए, जब वापस आए वहां से, तो देखे इतना बड़ा महल बन गया है, तो बड़े डर गए, बोले ये क्या, मैं तो भगवान को भूल जाऊंगा इसमें, है ना। तो ये भक्त कभी भी भगवान से धन ऐश्वर्य नहीं मांगता, क्योंकि जानता है कि जो ऐश्वर्य जो है वो हमें भगवान से दूर ले जाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचित साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसलिए इस संसार में क्या भोग करेंगे, कितने दिन तक भोग करेंगे, दुख तो आएगा ही हमें। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान पे पूरा आश्वस्त रहिए कि आप अगर भगवान की शरण में रहेंगे, आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करिए अच्छा से, कटौती मत कीजिए, है ना। और आपका जो दिन भर उसके बाद जाके पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू डू योर स्टडीज, इवनिंग स्टडी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेस का फैसिलिटी, भगवान की इतनी दया है कि आप देखो आप लोगों के लिए इतना अच्छा यहाँ पे जगह बनाया ना, है ना। और आपके लिए हमारे कुक हैं अजीत प्रभु, इतना अच्छा सुंदर खाना प्रसाद बनाते हैं, भोग ऑफर होता है, हर चीज की इतनी उत्तम व्यवस्था है। इस सब के बदले में भगवान आपसे केवल एक ही चीज चाहते हैं कि आप टाइम पे मॉर्निंग प्रोग्राम में मौजूद रहे, है ना। स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम रखिए रोज रेगुलर, और लेक्चर सुनिए, है ना। और अगर आप इस तरह से, हमारा वर्ग प्रभु है यहाँ पे, उनके गाइडेंस में अगर आप लोग रेगुलर अगर उनके आदेश का पालन करते रहेंगे, तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं होगा। और दिस विल बी द लास्ट लाइफ ऑफ सफरिंग, इसके बाद तो कोई सोचना ही नहीं। तक तो आदि हम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से जन्म नहीं होगा इस भवसागर में, हमेशा हमेशा के लिए हम गोलोक वृंदावन जाएंगे धाम। तो फिर तो दुख है ही नहीं, दुख कहां से। तो इसलिए कहते ना कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड रिटर्न। लेकिन भौतिक जगत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिटर्न बहुत थोड़ा है। वो मधुमक्खी का एक बूंद, शहद की एक बूंद के जैसा रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है। सो मच 24-25 ईयर्स ऑफ स्टडिंग, वर्किंग सो हार्ड, स्टडिंग रात रात भर बैठ के घसीटते घसीटते पास करते करते, तब जाके एक जॉब मिलती है। वहां पे भी डेडलाइन ये वो है। तो रिटर्न बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है भौतिक जगत में। लेकिन भगवान की भक्ति में इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न बहुत ज्यादा। जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने कितने साल तक तपस्या की, 36,000 वर्ष तक तपस्या की, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया, लेकिन कितने साल तक राज्य किया उसने पूरे ब्रह्मांड में, 5 साल तक। 36,000 साल तक तपस्या की और 5 साल तक राज्य किया। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कितने साल तक भक्ति की, 5। कितने साल तक राज्य किया, 36,000 वर्ष तक। 36,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद महाराज ने, और उसके बाद में शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम चले गए। तो इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज्यादा, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान अपने भक्त को ऐसे बचा के रखते हैं सारे दुखों से, छत्र छाया रख। माया को बोलते माया कृष्णा की डॉग है। तो मालिक का किसी के घर में डॉग होता है, आप जाते हैं देखते हैं कुत्ता भूखता है बड़ा, लगता है काट लेगा, लेकिन जैसे ही मालिक आता है बोलता है पिंटू हैं पिंटू छोड़ दो, ये साहब है, अपने आदमी है, तो एकदम वो दुम दबा के दुम दबा के पीछे उठ जाता है, साइड में जाता है। उसी तरह से कृष्णा माया बहुत भोगती है भक्तों पे, जैसे ही तो बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो तुरंत कृष्णा आते बोलते माया को, बोलते माया ये मेरा अपना आदमी है, इसको परेशान मत करो, है ना। तो माया भी चुप हो जाती है, ठीक है चलो ये हरि भक्त है, हरिदास है, इसको तंग नहीं करना है, है ना। इस तरह से, लेकिन वो माया आपको कब तंग नहीं करेगी, अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में, है ना, भक्तों के मार्गदर्शन में, जो कम से कम जो विधियां हैं उनका पालन करना है हमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो आप लोगों के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको हमें हर हालत में करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के चैंटिंग करना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इससे और शॉर्टकट प्रभु जी थोड़ा और शॉर्टकट बताइए, बहुत ज्यादा है ये, है ना। नहीं, ये शॉर्टेस्ट कट है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल कट, इसमें कोई और कट नहीं है, समझ रहे बात को, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल कट। प्रभुपाद पता है पहले बोलते थे 64 माला जप करने के लिए अपने शिष्यों को, प्रभुपाद ने बोला था रोज 64 माला करना है। प्रभुपाद 64 माला करते थे, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते 64 माला। तो प्रभुपाद ने क्या किया, कर दिया, बोला एटलीस्ट 16 राउंड, ये है क्या है शॉर्टेस्ट, इससे कम में माया से हम पार नहीं पा सकते। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ये जो स्टैंडर्ड है 16 राउंड वाला, वो हम अटेन करें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये दिस टेक्स 2 आवर्स, नॉट मच, 2 घंटे, अगर आप प्रयास करो तो इसको प्राप्त कर सकते हो, इस स्टेज को। 2 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है। मुझे याद है जब मैं भी पढ़ाई करता था, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। देखो बाहर के लड़के क्या क्या करते हैं जो भक्त नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कितने घंटों 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 बिता देते हैं। क्रिकेट मैच होता है तो घंटों घंटों देखते हैं कि नहीं, 8-8 घंटे का क्रिकेट मैच होता है, और वर्ल्ड कप आने वाला आप देखिए, तो कितना टाइम है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो बोलते नहीं ये टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। तो टाइम जो है हमें निकालेंगे तो निकलेगा। मुझे याद है जब हम लोग जॉब करने जाते थे तो मैं 7 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, 7:15 बजे, और 9:30 बजे रात में आता था ऑफिस से। लेकिन फिर भी मैं 16 माला करता था सुबह मंगल आरती, हमारे बेस में 4:30 बजे मंगल आरती होती थी, सुबह मंगल आरती अटेंड करता था, ऑफिस जाता था, बेस का इंचार्ज था मैं, बेस में 25 डिवोटी रहते थे, आपके बेस में तो 3-4 डिवोटी रहते हैं कि नहीं, मेरे बेस में 25 डिवोटी रहते थे। कुछ भी हो, बेस में पानी नहीं आ रहा है, जैसे आज आप लोग यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हर चीज का टेंशन है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब्जी, ग्रोसरी, तो सब संभालता था मैं। एंड आई वॉज वर्किंग फॉर 14 आवर्स, फिर भी 16 माला करता था, कैसे करता था। तो उसी तरह से अगर कहते ना जहां चाह वहां राह, अगर आप प्रयास करोगे, हमने देखा है कई हमारे ऐसे जैसे आईटी या कई इंस्टीट्यूशन में हमारे बेस है, वहां पे लड़के करते हैं माला 16 माला, कोई मुश्किल नहीं। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो करता था, लेकिन कहते हैं कि इच्छा होनी चाहिए हमारी। अगर आप इच्छा करेंगे तो आपको भगवान शक्ति देंगे, है ना, और शक्ति देंगे तो आप इसको कर पाओगे, मुश्किल नहीं है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना, इट्स पॉसिबल। और ये ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। बाकी सारा इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन यही जो है हमारे साथ हमेशा रहेगा, जाएगा और पचाएगा, है ना। प्रारब्ध है ना का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इस स्टैंडर्ड को प्रयास कीजिए प्राप्त करने का, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और आप देखेंगे कि आपको शक्ति आएगी, है ना। यू कैन स्टडी थ्रू आउट द डे, होल डे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वहां पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, फ्रेंड्स से गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स, वो सब टाइम बचाइए, और वो सब टाइम बचा के वही टाइम में पढ़ाई कीजिए, है ना, और भगवान की भक्ति की, यही 2 काम होता है हमारा, पढ़ाई और भक्ति, है ना। फिर आप देखिए आपके पास बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम होगा। आप लड़कों का टाइम देखेंगे, जो लड़के बाहर रहते हैं तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, घूमते, गर्लफ्रेंड होती हैं, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, सब करते हैं, करते कि नहीं? आप कॉलेज में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं ना लड़के, तो उनको कहाँ से टाइम मिलता है? अब उनको उसे में बोले कि आप तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है गर्लफ्रेंड के साथ, बोले पागल हो गए हो तुम, इतना अच्छा है ये तो, यही तो लाइफ में टाइम यूटिलाइजेशन है, वैसे बोलते हैं। उनको बोले पढ़ाई नहीं करोगे, बोला पढ़ाई तो होती रहेगी, है ना? लेकिन हम कभी भक्तों को बोलते भक्ति नहीं करने, पढ़ाई नहीं करनी है, तो बोले प्रभु जी बहुत पढ़ाई करनी है, प्रभु जी भक्ति में बहुत टाइम जा रहा है, भक्ति में बहुत टाइम जा रहा है, आज तो एक घंटा चैंटिंग कर लिया, है ना? इस तरह से हम करते हैं। और वही अगर माया के एंजॉयमेंट करने, कब 8 घंटे क्रिकेट मैच देख लिया, नहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बड़ा अच्छा रहा, नो प्रॉब्लम, है ना? तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी है ये, दैट्स ऑल। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा से आप लोग रखिए यहाँ पे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? और पर्सनली अगर आप लोग स्टडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, हाउ टू बैलेंस, है ना? दैट यू कैन डिस्कस विद अवर ग्रुप, है ना? पर्सनली मिलके डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी, है ना, आप इस कॉल में एक फायदा ये है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं कि कुछ जॉब नहीं लगा था हम लोग, चलो पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था, नहीं, वी हैव गॉन थ्रू योर लाइफ, जिस लाइफ से आप लोग जा रहे हो उस लाइफ से हमने पढ़ाई की है, हमने देखा है जीवन को, हम जानते हैं कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, है ना? तो वी कैन टेल यू हाउ टू बैलेंस, वेयर वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, कैसे इसको मैनेज करें, तो पूछना चाहिए, है? फोन पे बात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आने के बाद ही, अगर आपको पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, कैसे बैलेंस करें, कितने घंटे पढ़ाई की आवश्यकता है, उसके अनुसार आप लोग करिए। आप लोगों को ये कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है ऐसा कि बैलेंस करने में बोलते हैं मुश्किल होती, पढ़ाई टाइम का दिक्कत होता है? रिनल आप क्या कर रहे हो? कौन सी? SSC ये सर। तो उसमें उसको करते रहिए और साथ साथ भक्ति भी कीजिए जितना हो सके यथाशक्ति। ठीक है, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की
जय।
और भक्तवृंद की, नेक्स्ट बैच भी आने वाला है क्या? कितने बजे से? आपका नाम क्या है?
प्रिंस
राजकुमार। तो नए बैच के लड़के आएंगे तो उनको कौन सा टॉपिक होगा? अच्छा, नए लड़के थे, फर्स्ट टाइम आए थे?
ये रिकॉर्ड इसको बंद कर।